आप हैं SBS हिंदी के साथ। और अब दीजिए पेश है समाचार कुमुद मिरानी के साथ। आज के मुख्य समाचारों में, विक्टोरिया के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने होटल क्वारंटीन जांच के सिलसिले में दिया इस्तीफा। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजक्लियन ने एक भ्रष्टाचार जांच में बताया कि जब डैरिल मैग्वायर को संसद से देना पड़ा था इस्तीफा, वो उनके साथ करीबी रिश्ते में थी। और बिहार के बक्सर में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके 5 वर्षीय बच्चे की हत्या। लीजिए अब सुनते हैं समाचार विस्तार के साथ। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज के कार्यालय के प्रमुख ने अपने पद से ऐसे में इस्तीफा दिया है जब फोन रिकॉर्ड से जाहिर हुआ है कि उन्होंने राज्य के होटल क्वारंटीन कार्यक्रम की स्थापना के वक्त पुलिस अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रीमियर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी क्रिस एक्लिस ने सप्ताह अंत के दौरान होटल क्वारंटीन जांच मामले को उनके रिकॉर्ड सौंपे जाने के बाद पद छोड़ने की सूचना दी है। श्री एक्लिस ने स्वीकार किया है कि उनके रिकॉर्ड से साबित होता है कि 27 मार्च के दिन, जब ये निर्णय लिया गया था कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स क्वारंटीन होटल्स में कार्य के लिए लगाए जाएंगे, उस दिन उन्होंने 2 मिनटों के लिए विक्टोरिया के पुलिस चीफ कमिश्नर ग्रैम एश्टन के साथ बातचीत की थी। मगर वो कहते हैं कि वे जांच में दी गई अपनी इस गवाही पर अटल हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के इस्तेमाल का निर्णय प्रीमियर के विभाग से किसी ने नहीं किया था। विक्टोरिया में कोविड-19 के 15 नए केस दर्ज हुए हैं, मगर किसी के भी मरने की खबर नहीं आई है। ये रिपोर्ट ऐसे में आई है जब प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने इस रविवार 19 अक्टूबर से कोरोना वायरस संबंधित कुछ छोटे प्रतिबंधों में ढील देने का विचार किया है। मेट्रोपॉलिटन मेलबर्न के 14 दिनों के रोलिंग मामलों की औसत संख्या 9.3 से 9.9 तक बढ़ी है, मगर क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में औसत संख्या 0.4 पर स्थिर रही है। न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 6 नए मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से एक मामला स्थानीय संक्रमण से उभरा है, जबकि 5 मामले होटल क्वारंटीन से संबंधित हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ का कहना है कि स्थानीय मामला एक घर के संक्रमण से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट कल जारी की गई थी, और ये 2 संक्रमण अन्य स्थानीय संक्रमण मामलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी जांच अभी तक हो रही है। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजक्लियन ने एक भ्रष्टाचार संबंधी तहकीकात के मामले को बताया है कि जब पूर्व लिबरल सांसद डैरिल मैग्वायर को राज्य संसद से ज़बरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा था, तब वे उनके साथ नज़दीकी व्यक्तिगत संबंध में थी। The Independent Commission Against Corruption, ICAC, कार्यकाल के दौरान श्री मैग्वायर पर इन कथित आरोपों की जांच कर रहा है कि उन्होंने अपने लोकपद का दुरुपयोग करते हुए अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया था। सुश्री बेरेजक्लियन को ICAC में ज़बरदस्ती पेश होना पड़ा जब ये बात सामने आई कि वागा वागा की पूर्व सांसद ने अपनी व्यक्तिगत ईमेल एड्रेस रेसिंग के वारिस प्रॉपर्टी डेवलपर लुइस वाटरहाउस को दी, ताकि उनकी ज़मीन को फ़ायदा दिलवाने के लिए वो लॉबी करने में मदद करें। वो बताती हैं कि श्री मैग्वायर के साथ उनका नज़दीकी संबंध 2015 के राज्य चुनावों के वक्त शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने गत माह उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया।
At all times, I've given my life to public service. I would never do anything to jeopardize my service to the people of this state. I was always very clear, am always very clear of my responsibilities to the public and have a very clear ability to separate my private life from what I do in the public interest.
कुछ अन्य समाचारों में, अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई अपनी छुट्टियों के लिए विदेश जाने के प्लान बना रहे हैं तो उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ना जाएं। फेडरल सरकार का कहना है कि वर्ष 2021 के लिए हॉटस्पॉट्स की तरफ जाना अच्छा विकल्प नहीं होगा, बल्कि सरकार ऐसे देशों के साथ दोबारा संपर्क शुरू कर रही है जहां पर कोरोना वायरस का सबसे कम फैलाव हुआ है। इस सप्ताह के अंत से न्यूजीलैंड के लोग नॉर्दर्न टेरिटरी और न्यू साउथ वेल्स में बिना क्वारंटीन के ही आ सकेंगे। उम्मीद की जाती है कि जल्द ऑस्ट्रेलियाई तास्मन के पार भी यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 7 नेटवर्क पर कहा कि उन्होंने प्रशांत और एशिया के नेताओं से दोबारा यात्रा संबंध शुरू करने की बात भी की है।
Places like South Korea, Singapore and Japan, we've had good discussions with them, but I think that's a bit further off. But you only need to look at what's happening in Europe at the moment, where they're going through a horrific further wave of COVID-19. And of course, we've got to be extremely careful about that.
घरेलू हिंसा पीड़ितों का समर्थन करने वाले राज्य तथा टेरिटरी सरकारों से मांग कर रहे हैं कि किसी को बलपूर्वक अपने काबू में करने को अपराध मानना चाहिए, क्योंकि यही घरेलू और पारिवारिक हिंसा का पूर्व लक्षण है। बलपूर्वक अपने काबू में रखना, जिसे कोअर्सिव कंट्रोल कहा जा रहा है, उसके तहत कई प्रकार के बर्ताव आते हैं, जैसे कि अपने पार्टनर या अपने पूर्व पार्टनर जोड़ीदार को छुपी हुई धमकी देना, उसे नीचा दिखाना, उनकी हर वक्त चौकसी करना और उन्हें अपने प्यारों से दूर रखना। विमेन्स सेफ्टी न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड विमेन्स लीगल सर्विस और वाइट रिबन ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने मिलकर देश भर में नए सुरक्षा कानूनों की मांग की है। वुमेन्स सेफ्टी न्यू साउथ वेल्स की मुख्य अधीक्षक हेली फॉस्टर कहते हैं कि मौजूदा घरेलू हिंसा के कानून ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं द्वारा भुगते जाने वाले शोषण को सही रूप से नहीं दर्शाते हैं।
Domestic and family violence is not limited to physical instances of assault, sexual assault, physical assault, stalking or intimidation. It usually occurs as a pattern of behavior over time and can take many forms. It can be in the form of controlling one's finances, cutting them off from friends and family, monitoring and surveilling them, or humiliating and degrading them.
और भारत के समाचारों में हाथरस सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद अब ये खबर आई है कि बिहार की राजधानी पटना के निकट बक्सर में एक महिला के साथ हैवानों जैसा बर्ताव किया गया है और उसके 5 साल के बच्चे को मार दिया गया है। आरोपियों ने दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और जब 5 साल के बच्चे ने विरोध किया तो उसका गला दबाकर उसे मार डाल दिया गया। महिला को मरा हुआ समझकर उन्होंने एक नहर में फेंक दिया। महिला का अस्पताल में इलाज हो रहा है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जाता है कि वो महिला अपने बच्चे के साथ बैंक जा रही थी, ऐसे में उनके साथ ये हादसा पेश आया। रास्ते पर चलने वालों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी है। 5 लोगों के खिलाफ फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। दूसरी ओर हाथरस मामले में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़ित लड़की का परिवार आज बड़े सवेरे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस से लखनऊ पहुंचा। पीड़िता के परिवार से उसकी माँ, उसके पिताजी, 2 भाई और 1 भाभी, 5 लोग मिलकर गए हुए हैं। कानूनी जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह विभाग के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, हाथरस के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कई अन्य अधिकारियों को भी तलब किया गया है। एक नज़र डालते हैं मुद्रा दरों पर। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर भारत के 52.78 रुपयों के बराबर है और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूएस के 72 सेंट्स के बराबर है। और अंत में जाते जाते एक नजर डालते हैं कल यानी मंगलवार के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों के मौसम और तापमान पर। कल पर्थ में धूप रहेगी, न्यूनतम तापमान वहां होगा 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। एडलेड में भी धूप होगी, न्यूनतम तापमान 15, अधिकतम 26 डिग्री। मेलबर्न में एक आध बौछारें होंगी, न्यूनतम 13, अधिकतम 17 डिग्री। होबार्ट में धूप ही धूप होगी, न्यूनतम 8, अधिकतम 15 डिग्री। कैनबरा में बारिश की संभावना है, न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम 25 डिग्री। सिडनी में धूप होगी मगर तेज हवाएं भी चलेंगी, न्यूनतम तापमान 14, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, न्यूनतम 17, अधिकतम 28 डिग्री। डार्विन में धूप ही धूप होगी और न्यूनतम तापमान वहां 25 डिग्री, अधिकतम होगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्ते।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।